पर रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। अरबा रेडियो के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज श्रृंखला में आप सुन रहे हैं लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से बातचीत। पिछले दो एपिसोड्स में आपने इनकी बचपन से लेकर एनडीए एनए में चयन तक की बातें सुनी। इस यूपीएससी की कठिन परीक्षा में तैयारी क्या होती है, फिर ट्रेनिंग, फिर एसएसबी, ये कठिन सफर कैसे तय किया इन्होंने और किन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, कैसे और कब उनके नाम के आगे लेफ्टिनेंट शब्द जुड़ा, सुनिए आज की बातचीत में मातृका के साथ उनकी बातचीत का तीसरा भाग प्रस्तुत है अरपा रेडियो पर। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
एसएसबी की तरफ जाने से पहले हम इसके पेपर के बारे में बात करना चाहेंगे कि आपका जो पेपर था उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की, आपने पेपर सॉल्व किए और फिर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा तैयारी।
मैम एक्चुअली पेपर जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक मैथ्स का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है और एक जनरल एबिलिटी होती है वो 600 नंबर का होता है, दैट टोटल मेक्स ऑफ 900। तो मैथ्स का पेपर होता है, मैम मैथ्स इज टोटली पूरा मैथ्स, इट्स नॉट इन द लेवल ऑफ आईआईटी जेई का, इट इज नॉर्मल लेवल, पास मतलब पढ़ सकते हैं, समझ में आता है अच्छे से। और उसके बाद जो जनरल एबिलिटी होता है वो यू कैन से इट इज ऑफ लक, लाइक आप करंट अफेयर्स में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपसे क्या पूछूंगा। इट इज सेम लाइक उसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, 9 सब्जेक्ट्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, सब कुछ का आता है। सो दोनों का प्रिपरेशन तो करना पड़ता ही है। मैथ्स थोड़ा हार्ड है। द चेकिंग प्रोसीजर इज लाइक दिस कि अगर आप मैथ्स के पेपर में पास नहीं हो, लाइक यू गिव अ एग्जाम, मेरे पास आपकी दोनों ओएमआर शीट आती है, इट इज अ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, मैं मैथ्स का पेपर पहले चेक करूंगा। अगर मैंने 300 नंबर में मान लो 100 नंबर कट ऑफ रख दिया है, अगर आपके 100 नंबर मैथ्स के पेपर में स्कोर नहीं हुए तो मैं आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर ही चेक नहीं करूंगा। दैट इज द रीजन कि अगर आपको पास होना है, अगर आप कितना भी अच्छा कर लो, इवन इफ यू स्कोर 590 आउट ऑफ 600 इन दैट पेपर, बट यू हैव टू स्टिल स्कोर 100 मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर। अगर फर्स्ट पेपर स्कोर नहीं कर पाए, देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग।
आपका मैथ्स स्ट्रांग था
उस टाइम तक, स्ट्रांग था अब नहीं।
उस टाइम तक आपका मैथ्स स्ट्रांग था, जनरल एबिलिटी में कितना ज्यादा था? जैसे आप बोल रहे हैं कि इट्स बाय लक, तो लक कितना अच्छा था उसमें?
जनरल एबिलिटी वाज आई गॉट अराउंड 370 समथिंग मार्क्स।
ओके, सो इट्स मोर देन 50%।
इट इज अराउंड 50%, इट्स 55% अराउंड।
Around 55.
So that was my luck.
Okay, so that was your luck. Okay. अब जाते हैं एसएसबी का, क्योंकि 5 दिन का इंटरव्यू और आपने ही बताया जैसे कि पहले दिन ही बहुत सारे लोगों को वापस कर दिया जाता है, तो एसएसबी में जाने के लिए कैसी तैयारियां थी?
मैम एसएसबी के लिए पहली बार तो जो हमारे प्रिंसिपल थे ग्रुप कैप्टन तरुण खरे, वो एक जीटीओ थे, खुद एसएसबी के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनमें से वो एक थे, जीटीओ ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कराई थी। सो बेसिकली उस टाइम तक मेरे को पहली बार में ये पता था कि क्या क्या किया जाता है एसएसबी में, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, बेसिकली हमको ये सिखाया गया था कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ। लाइक आप बाजार में जाते हैं, बाजार में जाके आप एक टी शर्ट देखते हैं, टी शर्ट देखने के बाद आप वो टी शर्ट को बोल देंगे कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो दुकान वाला कैसे करके वो टी शर्ट, मैम ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा इतने साल में एक बार बनता है, मैम ये कपड़ा यहाँ का बना हुआ है, इसकी सिलाई की जो धागे यूज हुए वो यहाँ के हैं, ये देखो इस कंपनी का है। लाइक दे ट्राई टू सेल देमसेल्व्स। दिस वॉज द केस इन एसएसबी ऑल्सो कि हमको अपने आप को बेचना कैसे, मैं अपने आप को ओपन कैसे कर सकता हूँ उनके सामने, ओपन नॉट फुली, एक लिमिटेड वे में, ये हमने सीखा था। कुछ चीजें थी जो मुझे पहली बार में पता नहीं थी, जब मैंने दूसरी बार गया कुछ कोचिंग करके गया तब मुझे पता चला। फर्स्ट टाइम आई डू फील कि अगर मैं उस बार रिकमेंड हो जाता था आई वाज नॉट दैट स्मार्ट एनफ टू बी रिकमेंडेड।
तो जब आप फर्स्ट टाइम एसएसबी गए तो कौन से राउंड में आप वापस आए?
मैं फर्स्ट डे तो एंटर हो गया था, लास्ट डे एंटर नहीं हो पाया. फर्स्ट डे में हमारे टोटल 136 आए थे, जिसमें हम 23 हम अंदर हुए थे फर्स्ट डे, और उसमें से लास्ट में तीन रिकमेंड हुए थे.
सिर्फ तीन रिकमेंड हुए थे? और सेकंड वाले में?
सेकंड, एज आई टोल्ड यू, इट वाज 197 ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग, 29 ऑन द फर्स्ट डे, एंड लास्ट डे हम 8 थे.
अब इस एसएसबी का जाते हैं कि डे वाइज की फर्स्ट डे क्या होता है, क्योंकि जब हम आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू के बारे में सुनते हैं और जब इनके बारे में सोचते हैं तो ये इमेजिन कर पाना भी मुश्किल होता है कि ऑलरेडी इतना टफ एग्जाम दे के गए हैं, फिर उसके बाद और पता नहीं किस लेवल की चीजें वहां होती होंगी, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ.
एक्चुअली मैम, एसएसबी का अगर मैं आज भी याद करूं, मैं क्लियर करके, मैं सब कुछ कंप्लीट करके ट्रेनिंग करके रखा हूं, लेकिन आज भी अगर मैं उसके बारे में सोचता हूं, इट इज लाइक यार मैं किस जगह आके फंस गया. एसएसबी इज लाइक दैट ऑफ इंटरव्यू. अब इसका भी एक स्पेसिफिक होता है कि अगर मैं आर्मी वाला हूं तो आर्मी की एसएसबी अलग होती है, नेवी की अलग, एयरफोर्स की अलग, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. सो लाइक आई फर्स्ट टाइम At first I attended for Navy. मैं Navy में clear नहीं कर पाया था. Second I attended for Army. तो first day when we go, it is like भीड़ आई होती है. Like एक बोरी से इतना सारा चावल निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया है, एक जगह रख दिया है. और उसके लिए हमको एक प्रोसीजर होता है, वो एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कुछ होता है, उसका नाम मैं क्लियर नहीं, याद नहीं मुझे. उस टेस्ट में होता क्या है कि आपको एक एकदम धुंधली सी ड्राइंग दिखा देंगे, मतलब उस पर कुछ दिखता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता. यू गॉट 30 seconds की मेरे स्लाइड में, वो फोटो में अगर मेरे मेरे कैरेक्टर्स हैं जो भी हैं, तो उस कैरेक्टर को एक मेरे पेपर में बॉक्स बना, उसमें कहाँ कहाँ है वो कैरेक्टर्स, कहाँ कहाँ पे वो मार्क करो. देयर आफ्टर आई गेट 4 minutes, एग्जैक्ट 4 minutes मेरे को उससे एक स्टोरी बनानी है. वो पिक्चर बनाए, उसको देख के मुझे क्या लगा, और उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ स्टोरी आएगी, स्टोरी लिखनी. Thereafter there are some simple logical quizzes and all everything. एक टाइम पे लगता है कि चलो आज के दिन का जो टेंशन था, प्रेशर था, वो खत्म हो गया. Then the real thing comes. Like you, they take you in the group of 15 to 20. एक हॉल में लेके जाएंगे, वहां सामने 3 जजिंग ऑफिसर्स बैठे हैं. हम 16 लोग बैठे हुए हैं. हम 16 में से हम सबका एम है यार कि हमको अंदर जाना है. आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ. तो सारे 16 के 16 दे हैव टू डिराइव अ कॉमन स्टोरी फ्रॉम दैट पिक्चर. दैट इज रियली हार्ड, आज तक कभी हो ही नहीं पाता. दे फाइट फॉर देयर स्टोरी. सबसे पहले तो सारे अपनी स्टोरी बताएंगे कि हाँ मैं हूँ. वहां एक चेस्ट नंबर दिया जाता है कि हाँ मैं हूँ, लाइक आई वॉज चेस्ट नंबर 13. आई एम चेस्ट नंबर 13 रवि राठौर, एंड आई हैव रिटन दिस स्टोरी. आई नरेट देम स्टोरी, एंड उसके बाद वो बोलेंगे जेंटलमैन नाउ द डिस्कशन कुड बिगिन. अब उसके बाद सारे ऐसे वो जो ना लड़ाई का मैदान है, सारे कूद पड़ते हैं. उसके बाद सब बोलते हैं, कुछ भी चिल्ला रहे हैं. लाइक इट वाज अ स्टोरी की एक, मैं पहली बार बताता हूँ, एक को इंसान था, वो घर के बाहर जो चौरे टाइप का बना था उसमें बैठा हुआ है. वो था चेयर काइंड ऑफ थिंग, और उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. वन गाय वाज देयर, उसको वहां से घोड़े का सर दिख गया था, एंड ही मेड अ स्टोरी ऑफ कि वो इंसान बैठा हुआ है और घोड़ा उसको परेशान कर रहा है. इट वाज अ स्टोरी. एंड लास्ट में ये होता है कि अगर जो भी जितने सारी स्टोरी बना के रखे हैं, तो लास्ट में वो ट्राई करते हैं कि मेरी स्टोरी अगर फाइनलाइज होगी देन आई गेट मैक्सिमम पॉइंट्स. आई वाज लाइक सारे लड़ गए, मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोला था कि वहां वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़पेपर. एंड सेकंड थिंग, वो घर के बाहर बैठा था, मतलब ही वाज अ ओल्ड मैन रीडिंग न्यूज़पेपर आउटसाइड, एंड आई वाज इन. दैट वाज द फर्स्ट डे. उसके बाद अंदर आएंगे, उस दिन तक हमको एकदम पराया करके रखा जाता है कि सामान भी अंदर नहीं रखने देते. यू हैव केम हियर, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, एंट्री अपने रजिस्ट्रेशन कराया, अपना एग्जाम दो, वो जो टेस्ट है वो दो, अगर पास हो गया तब अंदर जाएंगे, नहीं हुए तो यहीं से अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाओ और वापस. जब अंदर गए उसके बाद हमको अगले दिन होता है, अगले दिन हमारा साइकोलॉजी टेस्ट होता है. साइकोलॉजी टेस्ट इज फुल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मर्स. लाइक पहले दिन तो मुझे सिर्फ एक पिक्चर दिखाया था, नेक्स्ट डे मुझे 11 पिक्चर दिखाएंगे. 30 सेकंड दिखाया, 4 मिनट स्टोरी लिखो, जैसे ही 4 मिनट खत्म हुआ फिर 30 सेकंड दिखाया, फिर स्टोरी लिखो. 11 पिक्चर तक ऐसे चलेगा, 12 पिक्चर में 4.5 मिनट के लिए पूरा व्हाइट स्क्रीन रहेगा. यू राइट अ स्टोरी ऑफ योरसेल्फ. आई रोट अ स्टोरी ऑफ, उस टाइम मैं शूटिंग करके आया था नेशनल, आई मीन नेशनल शूटर. तो उस टाइम मैं स्टोरी लिख के आया था कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ. आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, आई विल प्ले फॉर इंडिया. इट वॉज लाइक स्टोरी ऑफ दैट काइंड. जैसे ही वो खत्म होता है 15 मिनट का ब्रेक, यू कम बैक अगेन. अब बैठे, अब हमको एक बुकलेट दिया गया, उसमें 60 लाइन्स हैं. सामने स्लाइड है, हर 15 सेकेंड में साइड में वर्ड्स चेंज होंगे. स्माइल, यू, इट्स लाइक वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है. और उसमें मेरे को 15 सेकेंड के लिए वो फ्लैश हो रही स्क्रीन पे, उसी 15 सेकेंड में उस वर्ड को देख के सोच के मेरे को अपनी सेंटेंस भी बना के लिखनी.
मतलब आपको उस वर्ड पे सेंटेंस बनाना है 15 सेकेंड में.
उस वर्ड का मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कोई भी बना सकता हूँ, बट दैट वर्ड शुड बी देयर इन माय सेंटेंस उस 15 सेकंड में. लाइक 60 वर्ड्स होते हैं 15 सेकंड, तो बहुत नहीं 30 सेकंड होते हैं, 30 या 15 कुछ होते हैं ऐसे. बहुत कम टाइम मिलता है. ये जैसे खत्म हुआ, यू गो फॉर अ 15 मिनट ब्रेक अगेन, कम बैक अगेन. इट वॉज अ टाइम फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. नाउ इट्स लाइक वो धर्म संकट बोलते हैं ना, इट इज अ दैट टेस्ट. कि एक बुकलेट है, उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है, 60 सिचुएशंस है. फॉर एग्जांपल, मैं अपने पापा के साथ अपने गांव जा रहा हूँ. स्टेशन पे लास्ट ट्रेन खड़ी है उस दिन की. मेरे पापा और मैं भागते भागते उस ट्रेन को पकड़ने ही कर रहे हैं, तभी मेरे पापा का पैर एक बनाना पील पे चला जाता है. एंड माई फादर फेल डाउन. तो वॉट वुड आई डू देन. उसके बाद ये रहेगा, आई विल ब्लैंक. अब मेरे पास दो चीजें हैं. मेरे लास्ट ट्रेन निकल रही है, मुझे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे फादर को चोट लगी है. मेरा रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसे कुछ 60 सिचुएशंस होते हैं. फिर 30 मिनट्स टाइम है, वो खत्म हुआ, फिर 15 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर वापस बुलाएंगे. लास्ट टेस्ट फॉर द डे, इट इज कुछ होता है उसका नाम मुझे याद नहीं. इट इज लाइक वो 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं कि वॉट डू यू थिंक, how your parents think about you, what do you think how your teachers think about you, what do you think how your friends think about you, what do you think your how your siblings think about you, and what do you think how do you think about you. These are the 5 questions. Wo likhe. Fir ek person information questionnaire hota hai, that is your biodata. So mein sab kuch bachpan se leke, matlab jab se paida hue tab se leke aaj tak kya kiya hai usme sab kuch bharna hota hai. Us din khatam hota hai, interview saath saath chalta rehta hai. Second day khatam hua, थर्ड डे होता है ग्राउंड टेस्ट का. ग्राउंड टेस्ट इज लाइक एक ग्रुप डिस्कशन होगा. अब 29 लोग बचे हैं, तो उसमें 4-5 ग्रुप बना लेते हैं और अच्छे से असेस करने के लिए. तो 6-7-8 का ग्रुप बनता है. तो उस 29 लोगों में से सब पढ़ना स्टार्ट, कुछ भी, मतलब एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे दिए, सब लड़ना स्टार्ट कर दिए. कि 3 टॉपिक दिए, उसमें से हमको एक सेलेक्ट करना है, उसको उस ऑफिसर को बताना है, फिर वो बोलेगा हाँ नाउ यू कैन स्टार्ट. उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ने स्टार्ट, उसके बारे में डिस्कशन करने स्टार्ट करेंगे. एक ये होता है टेस्ट. दूसरा टेस्ट होता है कि मेरे सामने एक बोर्ड रख दिया जाएगा, उसमें कुछ ड्राइंग्स बने, बेसिकली कुछ कंडीशंस वाले ड्राइंग होते हैं. कि टाइम पंचुएशन कैसा होता है, कि लाइक अभी जैसे 5 बज रहे हैं, 5:30 में इस रेलवे ट्रैक से पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरने वाली है, टेररिस्ट ने वहां पे बम फिट कर दिया है. उसके बाद 5:45 पे वहां पे एक एक्सीडेंट होने वाला है. ऐसे 3-4 कंडीशन. और जस्ट जब तुम निकलने वाले थे, तभी एक बंदा भागते भागते आया, ही टेल्स यू दैट वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पे पर्सन इज ब्लीडिंग प्रोफसली. तो आप कैसे ऑर्गेनाइज कराओगे? ये एक केस होता है. फिर कुछ ग्रुप टास्क होते हैं, प्रोग्रेशन ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसको कैसे सब मिल के पार करेंगे. ऐसे कर करके थर्ड डे निकलता है. फोर्थ डे भी सेम चीज होता है. फिर उसके बीच में इंटरव्यू होती है. अब इंटरव्यू इज लाइक यू कैन से द क्लोथ रेजर्स फॉर यू. उस पर हर चीज निकाल देते हैं. मैं इंटरव्यूअर से कम 5-7 मीटर दूर बैठा रहूंगा. वो मेरा PIQ लाएंगे, PIQ में मेरा सब कुछ लिखा हुआ है. वो स्टार्टिंग से कुछ कुछ पूछना शुरू करते हैं. कि आप ऐसे हैं? यस सर. आप ऐसे क्यों? अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों नहीं है? I was like, I had written my hobby singing. So he asked that you are a boy, why do you sing? Well, sir, it is my hobby. So you can sing a song in front of us now. In this room. मैं बोला सर मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, can't sing a song. तो बोलता है अगर तुम नहीं गाओगे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. बोला सर I am in an interview. You tell me anything, I can do it, but this is out of the box, I can't do it. फिर वो समझाया उसके बाद एट लास्ट इन माय इंटरव्यू रूम आई वाज सिंगिंग
गाना कौन सा था
कौन सा था वो रंग शरबतों का उस टाइम नया नया रिलीज हुआ था
अच्छा तो लाइक दे अलाउ यू टू सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग
दे अलाउ मी टू डू एनीथिंग
ओके
दे कैन अलाउ मी टू डू एनीथिंग इवन आई टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर इन एसएसबी ही वाज अ गुड डांसर ही इवन डांस इन द इंटरव्यू रूम
ओके
एंड इट वाज लाइक 45 मिनट एक घंटे का होता है इंटरव्यू 45 मिनट के बाद माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज लाइक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू रवि यू कैन प्लीज लीव सो मेरा था कि मैं ऐसे चेयर से उठा एंड गेट जैसे तो मैं जाके गेट के पास पहुंचा ही एंड आई वाज जस्ट ओपनिंग माय डोर तो वो बोलते हैं रवि मेरे को बस कुछ और क्वेश्चंस आ गए हैं प्लीज आके बैठ जाओ मुझे पूछना है सो आई वेंट बैक एंड सैट ऑन दैट चेयर लाइक यस सर यू कैन प्लीज आस्क बी वेरी गुड फॉर मी सो 45 मिनट के बाद वो इंटरव्यू 2.5 घंटे पे जाए खत्म मतलब जब मैं बाहर आया तो ऐसा होता है कि हमको वेट करना होता है कि यार वो ऑफिसर है उसको वेट ना करना पड़े तो मेरे बाद दो लोग और स्टार्ट मतलब बैठा दिया जाता है कि जैसे खत्म हुआ उसके बाद वो नेक्स्ट बोलेगा तो यू कैन आई वाज चेस्ट नंबर 13 14 और 15 बैठे हुए हैं हम 5:30 बजे आए थे 6 बजे मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हुई माई इंटरव्यू वॉज आइडियली टू स्टॉप एट 6:45, 6:50 और 7 o'clock मैं जब बाहर आया तो उस टाइम पे टाइम हो रहा था 8:43 PM 8:43 PM 6 PM से स्टार्ट हो गई 8:43 PM तक खत्म हुआ एंड ऐसा माना जाता है एसएसबी में कि जिससे कुछ नहीं पूछते वो पक्का बाहर है जिससे थोड़ा कुछ पूछते हैं मतलब ऐसे 40-45 मिनट तो उसका हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अब जिससे ऐसे वाली लेते हैं इंटरव्यू ही इज श्योरली टू बी रिकमेंडेड और श्योरली टू बी नॉट रिकमेंडेड अब जब मैं आया अपने रूम वापस तो एवरीवन भाई तेरे से क्या पूछ रहे तेरे से क्या पूछ रहे 2.5 घंटे तक क्या बैठा के रख लेते अब मैं कैसे बताता यार उनको कि मैं गाना गा के आ रहा हूँ भाई अपने इंटरव्यू में सो 4 दिन खत्म हुआ फाइनल डेज अभी तक 4 दिन तक एवरीवन इज लाइक सब सीवीज में घूमते जैसे मैं अभी एक शर्ट और ट्राउजर पहन के वैसे वो आते हैं वैसे ही आते हैं जैसे एक मेरे GTO थे पूरे टकले थे एक बाल नहीं था सिर्फ मूछें थी उनकी एंड ही यूज्ड टू वेयर स्पेक्स सॉरी गॉगल्स काले एकदम काले दिखते ही नहीं थे कुछ सो हमारे दोनों GTO वाले ग्राउंड टास्क वाले दिन ना बहुत बारिश हो रही थी अगस्त में था मेरा जब सेकंड तो फर्स्ट डे आया बोले ओके जेंटलमैन हाउ इज द डे हम बोले सर इट्स नॉट गुड बारिश हो रही है तो ही वॉज लाइक तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे खेत के हमारे देश के किसान खेत में अपना काम कैसे करेंगे तो यू शुड से दिस इज अ गुड डे बोले सर वी से दिस इज अ गुड डे नेक्स्ट डे फिर से आए फोर्थ डे बोलते हैं ओके जेंटलमैन हाउ इज द डे हम बोले सर इट इज गुड डे हाउ कैन यू से दिस इज अ गुड डे यार देखो कल से बारिश हो रही है पूरा सब कुछ गीला गीला हो गया दिस इज अ वेट डे इट इज नॉट अ गुड डे फाइनल डे जब होता है तो इट इज लाइक एक कॉन्फ्रेंस हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल में सारी सेटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल वाली है कि सामने स्लाइड है सारे लोग ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं There is single one difference कि जहाँ स्लाइड उसके जस्ट सामने एक चेयर लगा हुआ वहां पे कैंडिडेट आके बैठेगा मैं जैसे चेस्ट नंबर 13 था तो चेस्ट नंबर 12 अंदर गया उसके बाद उसके बाहर आने के बाद 2 दिन में डिस्कशन होता है कि मैं रिकमेंड हूँ या ना हूँ मैं अगर रिकमेंड नहीं हूँ तो वहां पे जज करने वाले 3 लोग हैं एक साइकोलॉजिस्ट है एक ग्राउंड ट्रेनिंग वाला ऑफिसर है एक इंटरव्यूअर है तो अगर तीनों संतुष्ट है कि हाँ ये कुछ काम का नहीं है उसको सीधे अंदर बोला है हाउ वाज योर स्टे डिड यू विजिट एनीवेयर चलो
बाय
अगर पक्का रिकमेंड करना ही है तो सेम क्वेश्चन करके बाय और किसका किसी का कुछ डाउट हो गया कि मान लो ऐसा बोला कि साइकोलॉजिस्ट बोला कि नहीं मेरे को इस पार्ट में इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो घुमा के कोई भी क्वेश्चन शूट कर देता है कि ऐसा हुआ था आई थिंक व्हाट डू यू फील लाइक कैसा होना चाहिए तो व्हेन आई वेंट इनसाइड दे वर सो जेनरस कि हाय रवि बोला हाय सर How was the stay? मैं बोला it was excellent sir. How can you say excellent? बहुत मच्छर है यहाँ पे. मैं बोला sir I came for my SSB interview. I enjoyed it. I went outside. I visited places. There was so much mud outside due to the season and some construction going outside. Would you like the stay? Any complaints or any suggestions you want to? मैं बोला no sir nothing. And then go. You can please carry on. All the best for your journey ahead.
Okay.
So, when you say journey, it is like, चलो भाई वापस जाना है. डेढ़ दो घंटे बाद सबका खत्म हुआ, हॉल पे रखे हुए। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर 29 लोग हैं तो वो चेस्ट नंबर सीरियल नंबर वाइज बताते हैं, चेस्ट नंबर 1 इज रिकमेंड, द रिकमेंडेड लिस्ट इज 1, 3 ऐसा ऐसा करके। अब वो जो ऑफिसर आया है वो मतलब जबरदस्ती कॉल प्लेस बढ़ाने के लिए वो बोलता है 8 लोग रिकमेंड हुए तुम में से, अब मैं देखो मैं कैसे ही बताते जाऊंगा। ही स्टार्टेड विद चेस्ट नंबर 9। तो अब सबका एकदम धक धक कि यार कौन होगा कौन होगा। 9 के बाद सीधे 29 कर रहा है ऐसे करके। I was the last person to be. 7 हो गए, 22 बंदे बचे हुए। अब 22 में सिर्फ एक बंदा बचा जो रिकमेंड होगा, वो पता नहीं कौन होगा। एंड ही वॉज लाइक चेस्ट नंबर 13, मैं बैठा हूँ, चलो यार इस बार भी नहीं होगी, अगली बार ट्राई करेंगे। He was again चेस्ट नंबर 13, अच्छा मैं हो गया क्या? Yes sir. एंड ही वॉज लाइक ओके रवि स्पेल योर नेम। अब मैं स्पेलिंग बताना शुरू किया था, I was so blushing with that happiness कि मैं अपना स्पेलिंग नहीं बता पा रहा था अपने नाम का। It was that experience. So इन 5 दिन में हमको खुद पता नहीं रहता हम क्या किए। There is someone somewhere every time judging you in that 5 days.
You are slipping. Then still.
हाँ उस time पे ना वो wardens होते हैं, वो जाके बता देते हैं कि सर ये ऐसा कर रहा था।
Okay.
ऐसे होते हैं।
Even if you are snoring. तो वार्डन जाके से बता देंगे दैट ही वाज स्नोरिंग।
नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब अगर मैं अपने हॉस्टल के अंदर, मतलब वहां जो हॉस्टल है, अब मैं उसमें टीवी देख रहा हूँ, तो अब मैं कंटिन्यू सिर्फ गाने सुन रहा हूँ और गाने में सिर्फ बेस बेस वाले, तो वो एक चीज जाके वो ऑब्जर्व करके बोलते हैं सर ये जो आया है ना ये चेस्ट नंबर 13 वाला, कि ये बार बार सिर्फ गाने सुनता है और ये सिर्फ बेस वाले गाने सुनता है। एंड दिस इवन हैपेंड मेरे इंटरव्यू में कि आई गॉट टू नो दैट कि तुम बहुत सॉफ्ट सॉन्ग सुनते हो।
ओके
नो सर, तो नहीं तुम यहाँ सुन रहे थे। बोला हाँ सर यहाँ कुछ आता नहीं टीवी में, आई वाज लिसनिंग टू दैट, दैट वाज द केस।
आपने कहा कि आप नेशनल लेवल के शूटर भी थे, इसके बारे में कुछ
बात। क्लास 9th की है एक्चुअली। हॉस्टल से जब घर आओ तो वापस जाने का मन नहीं करता। हमको वापस बुलाया गया था 10 दिन पहले खरसिया में एक एनसीसी कैंप था। उस एनसीसी कैंप में हमको जाके बेसिकली एनसीसी कैंप सैनिक स्कूल में एनसीसी कंपलसरी होती है, एनसीसी कैंप में जा गया, वहाँ शूटिंग वगैरह की और उसके बाद चला गया कि सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद फिर जबलपुर गया, वहाँ पे एनसीसी का एक ग्रुप स्टेज का कोई कंपटीशन था, आई गॉट अ गोल्ड मेडल देयर और उसके आगे के लिए सेलेक्ट हो गया। अब जब स्कूल आता तो 9th क्लास, आई वाज नॉट इन स्कूल फॉर अराउंड 6 मंथ, मैं बाहर ही रहता था, बाहर घूम रहा हूँ। फिर फाइनल वाज जीवी मौलंकर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, वो आसनसोल में था उस टाइम पे, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, आई वाज ओवरऑल 48th इन इंडिया।
ओवरऑल आप स्पोर्ट्स में भी थे, आप स्टडीज में भी काफी ज्यादा
उस टाइम पे था, अब नहीं।
ओवरऑल आपका आपकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा इंप्रेसिंग थी फॉर एसएसबी।
आई डोंट नो फॉर मी आल्सो।
फिर एनडीएनए के ज्वाइन करने के बाद वहां का कैसा रहा, क्या रहा?
एक्चुअली पापा का नेम जो था वो मेरे मार्कशीट में थोड़ा डिफरेंट था, सो आई वाज नॉट गेटिंग माय कॉल लेटर। आई वाज 107 रैंक ओवरऑल, एयर ऑल इंडिया रैंक 107 एनडीए के मेरिट लिस्ट में। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पापा का नाम गलत है और अब मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा वाला प्रॉब्लम हो जा रहा था कि मैं जाऊँ कैसे, जाऊँ कैसे। फाइनली माई कॉल लेटर वेन केम 7 जनवरी 2019, आई ज्वाइन। वहाँ गया तो उस दिन भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे थे, सो एक स्कॉन का नाम है वहाँ पे, स्कॉन्स होते हैं, स्कॉन इज लाइक डिफरेंट हॉस्टल्स, एक स्कॉन है वहाँ पे हंटर स्कॉन, हंटर स्क्वाड्रन, दैट इज नोन टू बी द मोस्ट ड्रेडेड मोस्ट टफेस्ट स्कॉन इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब मैं गया अंदर एडजुटेंट के ऑफिस में, एडजुटेंट मतलब वहाँ का सबसे सीनियर पनिशमेंट और डिसिप्लिन का ऑफिसर होता है, तो जब मैं उसके ऑफिस में गया, ही वॉज लाइक कि तुम सैनिक स्कूल से, तुम्हारे सीनियर तुमको क्या क्या बताया है, क्या क्या बताया जल्दी बता दो, उसके साथ मैं तुमको स्कॉन दूंगा। तो मेरे सीनियर ने मुझे ये बताया था, भाई जाओगे तो क्लीन शेव करके जाना, ना मूछे होने चाहिए ना दाढ़ी, और हेयर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे कटे होने चाहिए। ठीक है सर मैं करके चला जाऊंगा। मैं वहां गया, गलती मेरी सिर्फ एक हो गई कि वहां जो फॉर्म सबमिट करने थे उसमें जो फोटो लगे थे मेरी मूछे थी और मैं उसके सामने बैठा था और मेरी मूछे नहीं थी। तो ही वॉज लाइक तुम मुझे में बहुत अच्छे लगते हो, जाओ हंटर्स कॉन जाओ, यू विल एंजॉय। अब हंटर्स कॉन हैज द ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग मुस्टैचेस इन एकेडमी,
ओके,
एंड दैट इज द रीजन आज तक अपने मुस्टैचेस शेव नहीं किए। एंड जब मैं बाहर आया तो देर वॉज वन गाय, उसके पापा भी ऑफिसर थे, वो भी एक्स एनडीए, उसके पापा भी एक्स एनडीए था, उसका बेटा एनडीए ज्वाइन कर रहा था. बाहर आया तो ही आज मी बेटा कौन से स्कॉन मिला. मेरे को तो हंटर्स कौन मिला है. अब मुझे तो पता नहीं है कि हंटर्स कौन कैसा है, जाने के बाद पता चलेगा. वो मुझे देख के हंसने लग गया कि हाँ अब तो मजा करेगा. द फर्स्ट डे आई वेंट देयर, मैं 5 बजे अपने स्कॉन में पहुंचा, रात को 8:30-9 बजे आई वॉज वॉमिटिंग. मुझे इतना पानी पिलाया गया, मतलब वहाँ पे वॉमिटिंग खाने से नहीं होती, वहाँ वॉमिटिंग पानी पिला पिला ही किया जाता है. थोड़ा सा हार्ड था लाइफ, बट यू नो व्हेन द लाइफ गेट्स हार्ड यू एंजॉय इट. थ्री इयर्स वाज लाइक, अब याद करने में 3 साल पता नहीं चलते, याद करने में वो जो पनिशमेंट का साथ में, पनिशमेंट का कुछ ऐसा हुआ था जब ऑफिसर हमको पनिशमेंट दे रहा है लेकिन हमने किया नहीं, कुछ ऐसा कि ऑफिसर ने कुछ बोला हो, हम करने गए, हम गलती से कुछ दूसरा कर गए, वो सारी चीजें हमको हमेशा याद रहती है. बाकी जो अच्छे मोमेंट थे, हाँ यार हो गया ठीक है, अच्छे मोमेंट थे, ये वाला याद रहता है.
फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड था वो कैसा रहा, लाइक क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड और इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग पीरियड तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग मिलती है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है ट्रेनिंग्स को, तो वो कैसा रहा
ट्रेनिंग? अब पता तो नहीं चलता बट इट वाज हार्ड दैट टाइम. जब स्टार्टिंग में, अब मैं एक, चलो मैं थोड़ा सा दौड़ लेता था स्कूल में, थोड़ा सा आता था, दौड़ना कैसे दौड़ते हैं, पुशअप कैसे लगाते हैं आता था. तो वहां जाके, हाँ भाई मैं सैनिक स्कूल से हूँ तो दे एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सैनिक स्कूल. ये तो सैनिक स्कूल में है और कब गया, 9th 26th में गया, तो 7 साल वहाँ रहा, मतलब इसको पता है कि कैसे के चौर चलन है. तो इट वॉज लाइक वो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमसे कि इसने तो ट्रेनिंग की है, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है. तो दे ट्राई टू कीप अस एट फ्रंट एवरी टाइम. अगर मेरे साथ 19 लोग हैं, हम साथ में 19 लोग ज्वाइन कर रहे हैं और हम 4 सैनिक स्कूल वाले, तो उन 19 के पहले हम 4 ऐसे खड़े होते थे, फिर पीछे 15 खड़े होते थे, हाँ तो सैनिक स्कूल वाले, इनको सब कुछ आता है. एक साल बाद सब नॉर्मल हो जाता है. कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे हमको स्कूल में एग्जाम्स पास करने होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे. कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम पास होने होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे. वहाँ भी 6 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें वहाँ पे टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म. तो वहाँ पे अगर मेरे को फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में प्रमोट होना है, मुझे एकेडमिक एग्जाम तो पास करने ही पड़ेंगे, मुझे उस टर्म में कोई ना कोई गेम खेलना पड़ेगा, मुझे टर्म में जितने कैंप्स होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, उनके रन बैक्स होते हैं 20-30 किलोमीटर, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे. फिर पीडी टेस्ट होते हैं कुछ कुछ, की स्टैंडर्ड है कि जैसे मेरे को अगर पुशअप करने तो ये 20 ऐसे वाले पुशअप कर सकता है, ये 2.5 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ सकता है, अगर कर सकता है तभी प्रमोट होगा, नहीं होगा तो 6 महीने फिर से रिपीट करो. सो वो सब कर करके वो थोड़ा हार्ड होता है. स्टिल वी रिमेम्बर द, अगर वो सब छोड़ के अगर हम याद करें तो मैं जैसे रन बैक्स की बात कर रहा था, तो रन बैक वॉज बिट हार्ड. रन बैक बहुत लंबे होते थे. इट वॉज लाइक मैं चल रहा हूँ ऊपर पहाड़ चढ़ा, पहाड़ के ऊपर पॉइंट में रिपोर्ट करना है, फिर नीचे उतरा, फिर आगे जाके फिर पहाड़ चढ़ा, उसके टॉप पे रिपोर्ट करना है, फिर नीचे उतरा. इट वॉज लाइक उस कैंपस, एनडीए इज ए स्प्लेंडेड कैंपस ऑफ अराउंड 7,000 समथिंग एकर्स. उसके अंदर आप जहां ढूंढोगे वहां पे पहाड़ आ जाते हैं. तो एक पहाड़ पे चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ उतारेंगे, उधर चढ़ा के दूसरे पहाड़ पे चढ़ाएंगे, ऐसे कर करके घुमा देते हैं पूरा. और वो सारी चीजें रात में हो तो कुछ नहीं दिखता.
सो इट वॉज इन देहरादून,
इट वॉज इन खड़गवासला, पुणे.
पुणे ट्रेनिंग बहुत टफ थी ओवरऑल. तो वहां से आने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग हुई लद्दाख में. तो अब कैसा लग रहा है कि बिलासपुर के बाद, बिलासपुर फिर उसके बाद देहरादून, और देहरादून का, देहरादून की ठंडी, फिर उसके बाद पुणे, फिर उसके बाद,
नहीं मैं पहले पुणे गया, पहले पुणे के बाद देहरादून.
हाँ
देहरादून में कमिश्निंग हुई, उसके बाद मैं घर पे, अब मैं जाऊंगा वहां पे.
हाँ तो अभी बिलासपुर से लद्दाख क्या क्या तैयारियां हैं, कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट कैसी है उसकी?
इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट have that chance to serve my country. मैं चाहे कुछ भी कर लूँ बट द foremost थिंग इज कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करने का मौका मिल रहा है. ठीक है मैं अगर दिल्ली में बैठ के हेडक्वार्टर्स में बैठ के अगर सर्व करता दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन मैं वहाँ जाके सर्व कर रहा हूँ, इट इज़ लाइक आज तक मैंने कभी खुद से सामने बर्फ गिरते नहीं देखी, एंड द टेम्परेचर देयर जहाँ मेरी पोस्टिंग है दैट इज द हाईएस्ट एयर फील्ड इन द वर्ल्ड. इट इज एट 16,700 फीट. इट इज अराउंड 5,100 मीटर पे. वहां पे एट प्रेजेंट कल रात की टेम्परेचर थी -29 डिग्री सेल्सियस -29 डिग्री सेल्सियस और अभी एट प्रेजेंट 11 फीट बर्फ की परत बन चुकी है. सो ठीक है, अगर हमारा एक ऐसा होता है कि ठीक है यार 4 साल ट्रेनिंग निकल गई तो ये भी निकल ही जाएगा, 7 महीने तो रहने वहां पे, फिर आ जाएंगे नीचे, फिर मजे करेंगे. मतलब इट इज लाइक सर्व तो करना ही है, वो मजबूरी अगर ले करूंगा तो आई विल ऑलवेज गेट प्रॉब्लम्स. और अगर मैं उसको एंजॉय करके करूंगा तो मुझे और ही मजा आएगा, मुझे और कुछ सीखने को मिलेगा. तो इट इज ऑलवेज इंजॉयिंग की मतलब जब हमको पता चलता है ना कि हाँ यार अब मुझे कोई नया प्लेस जाने को मिलेगा और वहां पे बहुत मजा आएगा. सो आई डू एंजॉय एवरी टाइम कि हाँ यार अब बहुत मजा आने वाला है, वहां जाऊंगा. लेट द प्रिपरेशंस बी एट देयर हेल्प. मैं एंजॉय तो पक्का करूंगा, ये पक्का है कि आई नेवर वेंट टू लद्दाख ऑन माय ओन. एटलीस्ट चलो वहां 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी तो लद्दाख की वादी में तो घूम के आ जाऊंगा.
मतलब आखिरी के 5 महीनों का इंतजार रहेगा वो 7 महीने?
एक्चुअली नहीं, ऐसा भी नहीं है. मतलब 7 महीने में मेरे को उस फील्ड का मतलब मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहां से चाइना का जो बॉर्डर है वो 5.5 से 6 किलोमीटर पड़ता है. इट्स लाइक अगर मैं अपने बाइनोकुलर ऑन करके ऐसे देखूँ तो सामने चाइना वाले की छोटी छोटी आंखें दिख जाएंगी. तो ठीक है, इट्स लाइक हमको छुट्टी मिल जाती है बट अब मैं अभी के ऑल्टीट्यूड पे, अभी मैं 600 के ऑल्टीट्यूड पे हूँ और वो है 5,000 के ऑल्टीट्यूड पे. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ ऑक्सीजन कम है. अगर मैं इधर देखूंगा नॉर्थ देखूंगा तो बर्फ है, साउथ देखूंगा तो बर्फ है, ईस्ट वेस्ट देखूंगा तो बर्फ है, सांस की थोड़ी कमी होती है. तो पहले मेरे को उसके लिए एक्लेमेटाइज किया जाएगा. जैसे पहले मैं चंडीगढ़ में कुछ दिन रुकूंगा, फिर जम्मू में रुकूंगा, फिर लेह में रुकूंगा, फिर 2-3 और जगह ऐसे वहां पे कुछ दिन रह के मेरे को थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाएगा जिससे मैं उसमें एक्लेमेटाइज हो जाऊँ कि हाँ भाई अगर इतना ग्रेविटेशनल प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. फिर फाइनली मेरे को जाके वहां पे लेके जाया जाएगा कि हाँ अब ये इंसान यहाँ रह सकता है, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा.
एक तरीके से बोलना चाहिए कि बिलासपुर की तरफ से ही इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं आपके आगे के सफर के लिए, और पूरे देश के जिम्मेदारी है वो आप लोगों के कंधों पे है. तो उसके लिए, उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ.
दैट इज अ बिग प्लेजर फॉर मी एट लीस्ट.
लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर के पिताजी श्री रामचंद्र राठौर जी से भी मातृका ने की कुछ बातें, आइए सुने.
जी मेरा नाम रामचंद्र राठौर है. 2022 में जनवरी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी दलहा जिला जांजगीर चांपा से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ. सेवानिवृत्ति पश्चात कोई काम नहीं है तो बस समाज सेवा का कुछ थोड़ा बहुत दायित्व मिल जाता है, उसमें अपनी दिनचर्या निकाल रहा हूँ.
कक्षा 5वीं में आपने लेफ्टिनेंट रवि को सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रेरित किया, तो क्या उस समय आपने ये कल्पना की थी कि आज लेफ्टिनेंट रवि है वो देश को सर्व करेंगे?
जी एक्चुअल में उस समय ऐसा कोई विचार मन में नहीं था. एक तरह से मेरी विवशता थी.
जी
विवशता इसलिए क्योंकि सामान्यतः लोगों में इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई की तरफ ज्यादा झुकाव है.
जी
इस तरफ नहीं है. बालक 6 साल का था इनकी माताजी का देहांत हो गया.
जी.
फिर एक इसकी बड़ी दीदी है, माताजी के बाद वही उसका देख रेख करती रही. अब वो भी विवाह होकर चली गई ससुराल. तब मन में एक आशंका आया कि मैं स्कूल चला जाऊंगा, बेटा भी स्कूल चला जाएगा और आएगा दरवाजा बंद रहेगा ताला, बैठा रहेगा दरवाजे में पराए बच्चे जैसे, इधर उधर संगत में बिगड़ जाएगा. तो फिर मेरे मन में आया कि कोई छात्रावासी संस्थान में इसका प्रवेश किया जाए. तो नवोदय के विचार आया मन में. फिर सैनिक स्कूल का विज्ञापन देखा तो इसमें भी आवेदन लगाया. फिर सैनिक स्कूल की रिजल्ट पहले आ गई तो यहाँ भर्ती करवा दिया. और इसके लिए थोड़ा सा सख्ती भी बरतनी पड़ी तैयारी के लिए, थोड़ा नटखट था. तो एक बार स्कूल से आते आते इसका मित्र ने साइकिल को धक्का दे दिया तो गिर गया. यहाँ कोहनी से उसका हाथ टूट गया. उसमें महीना दिन का प्लास्टर चढ़ा रहा. फिर बाएं हाथ की सहायता से तैयारी करवाता रहा.
तो रवि राठौर के पिता से लेके आज आप लेफ्टिनेंट रवि राठौर के पिता हैं, तो वहां से यहाँ तक अभी आप कैसा फील कर रहे हैं?
अभी तो कमीशन मिलने के बाद मैडम जी बहुत ज्यादा मैं गौरवान्वित हूँ और एक तरह से मैं अपने रवि को अपना आधार कार्ड मानने लग गया। वास्तव में रवि के माध्यम से बहुत लोग मुझको जानने लग गए, तो एक तरह से उसको आधार कार्ड अपना कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे गर्व है कि मैं अपनी संतान देश की सेवा के लिए सौंपने का मुझको सौभाग्य मिला, इस बात का बहुत ही गर्व है मुझको। वैसे तो किसी न किसी रूप में सारे देश के निवासी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सीमा पर जाग रहे हैं तब हम अपने घर पर हम चैन की नींद सो रहे हैं, इस बात का मुझे गर्व है
और आपके इस गर्व पे हमें गर्व है।
धन्यवाद।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। अर्पा रेडियो के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज क्रम में ये थी लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से बातचीत की तीसरी कड़ी। इन तीन भागों में आपने इनके जीवन की पूरी कहानी सुनी। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। सुनते रहिए अर्पा रेडियो। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।